नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश से आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण की होगी शुरुआत। राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से समाचारों का होगा प्रसारण। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर शुरू होगा राज्यव्यापी सहयोग शिविर। राज्य में नई खनिज संशोधन नियमावली लागू हुई। बालू पत्थर की ओवरलोडिंग पर 5 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। मौसम विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर रहा है। भोजपुरी समाचार आकाशवाणी पटना समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से प्रसारित किए जाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत के अवसर पर वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।
आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा ये समाचार प्रादेशिक समाचार एकांश के यूट्यूब चैनल AIRNews_Patna पर भी उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषाओं में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण कर रहा है। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
सहयोग शिविरों में जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौजूद रहकर स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से राशन, पेंशन, आवास, मनरेगा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, सीमांकन, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से भी इन शिकायतों की सीधी निगरानी की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
राज्य में बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2026 प्रभावी हो गई है। इसके तहत बालू पत्थर के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक के लिए प्रावधान किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नियमावली के तहत पट्टाधारी द्वारा वाहन पर वैध चालान से अधिक मात्रा में बालू या पत्थर लादने की स्थिति में अब पहली बार ऐसे प्रत्येक वाहन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 महीने में जुर्माना का भुगतान नहीं करने या 1 से अधिक बार उल्लंघन होने पर खनन पट्टा को 3 माह तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन बरकरार रहने पर जिलाधिकारी को अस्थायी रूप से खनन पट्टा रद्द करने का अधिकार दिया गया है। नियमावली के प्रावधान के तहत लघु खनिज का परिवहन केवल विशिष्ट रंग से रंगे और ढके हुए वाहनों से ही करना होगा। बिना ढके लघु खनिज के परिवहन पर अब प्रति ट्रैक्टर 5,000 जबकि अन्य बड़े वाहन के लिए 25,000 जुर्माना वसूला जाएगा। खनिज परिवहन के दौरान वाहन में लगे GPS डिवाइस से छेड़छाड़ करने या उसे बंद करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। आशीष रंजन, आकाशवाणी समाचार, पटना।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम से 80 अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जलाशयों के आसपास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इको टूरिज्म की सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पटना में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। श्री चौधरी ने पर्यटन के विकास के अन्य संभावित क्षेत्रों पर भी अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। पटना के लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गोवा, महाराष्ट्र और सिक्किम का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए तीनों राज्यों के निवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को प्रत्येक राज्य की विशेषताओं को जानना जरूरी है, इससे हम अपने देश को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। प्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान शराब पीने के मामलों में 1,28,470 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें पटना जिले में सबसे अधिक 15,675 जबकि शिवहर में सबसे कम 1,078 लोग गिरफ्तार हुए। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने बताया कि शराब बिक्री और सेवन के मामले में 9,41,857 छापेमारी हुई, वहीं 1,07,851 केस दर्ज हुए। बीते वर्ष 47,06,391 लीटर शराब जब्त हुई। श्री सहनी ने बताया कि अवैध शराब कारोबार से जुड़े 10,428 वाहन जब्त किए गए। प्रदेश में गुमशुदा या लापता बच्चों का पूरा विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के प्रावधानों को थाना स्तर पर लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इससे संबंधित एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके तहत अगर कोई बच्चा मिल जाता है तो इसकी जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज कराते हुए डाटाबेस को अपडेट रखना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की है।
दिनांक 18 मई राज्य के बक्सर, पूर्वी चंपारण एवं शेखपुरा जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का टिहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बक्सर का अधिकतम तापमान 42.8, कैमूर का 42.6 और शेखपुरा का 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 41.7 तथा गया, पटना, जीरादेई और जहानाबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। भीषण गर्मी के चलते पटना जिला प्रशासन ने 8वीं तक की कक्षाओं को दिन के 11 बजे तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। जिले के सभी सरकारी, निजी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र इसके दायरे में आएंगे। यह आदेश 21 मई तक लागू रहेगा। ई शिक्षा कोष ऐप पर अब शिक्षकों को स्कूल परिसर से 34 मीटर के दायरे में ही रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। पहले यह दायरा 500 मीटर निर्धारित था। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका सत्यापन शुल्क में कमी की है। CBSE ने शुल्क को 700 रूपये से घटाकर 100 रूपये करने की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन में यदि किसी छात्र के अंक बढ़ते हैं तो उसे शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि जल्द ही जोगबनी से देवघर के लिए नई रेल सेवा की शुरुआत होगी। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जोगबनी कटिहार मेमू सेवा की भी शुरुआत होगी। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले मनिहारी साहेबगंज गंगा नदी सेतु निर्माण कार्य इस वर्ष दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है।
मनिहारी साहबगंज जो पुल बन रहा है वो दोनों राज्यों के बीच की कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है और इसका हम लोग रेगुलर रिव्यू भी करते रहते हैं। पीडी साहबगंज के द्वारा इसमें बताया भी गया है रिव्यू में कि इस साल के अंत तक दिसंबर 2026 तक ये पुल का उनका पूरा करने का प्लान है और उसी हिसाब से कार्य योजना बना करके वो लोग काम कर रहे हैं। इसकी हम लोग समीक्षा साप्ताहिक रूप से पीएमजी की बैठक में करते रहते हैं और उम्मीद है कि ये पुल दिसंबर तक बन जाएगा तो लोगों को कनेक्टिविटी में आसानी होगी।
बकरीद का त्यौहार 28 मई को मनाया जाएगा। पटना स्थित इमारत शरिया और मरकजी मजलिस रुयत हिलाल खान का मुजीबिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल बकरीद का चांद नजर नहीं आया, इसके चलते 19 मई को जिलहिज्जा की पहली तारीख होगी। सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी भभुआ सासाराम पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में आज सुबह आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों के बीच भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जनरल बोगी D3 में चलने की गंध महसूस हुई, इसके बाद बोगी के भीतर धुआं फड़ने लगा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के गंभीरा गांव के पास 12 चट्टी विधायक ज्योति देवी के साथ असामाजिक तत्वों ने दुर्व्यवहार किया, साथ ही उनके सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई भी की गई। विधायक की शिकायत पर मोहनपुर थाने में 7 नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के चमनपुर गांव में कनकई नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं सहरसा जिले के नौहट्टा में कोसी नदी में नहाने के दौरान 2 किशोरियों की डूबने से मौत की खबर है। सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के मोहनी महुआ गाछी में अपराधियों ने एक CSP संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से 1,32,00,000 रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राजगीर में एक माह तक चलने वाले मेले का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, मलमास मेले में श्रद्धालुओं को सुरक्षा सुविधा मिलेगी। दैनिक जागरण लिखता है, अदानी समूह बिहार में अगले 2 से 3 साल में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। प्रभात खबर ने लिखा है, बेगूसराय में देशव्यापी साइबर ठगी का खुलासा, एक अकेले खाते के खिलाफ 205 शिकायतें। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, रेडीमेड गारमेंट हब बना पूर्वी चंपारण, कपड़ों की 493 फैक्ट्रियों ने बदली चंपारण की तस्वीर। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, देश के 8 राज्य भीषण गर्मी की चपेट में, पारा 40 डिग्री के पार। आज अखबार लिखता है, सूबे के सभी 534 मॉडल स्कूल 20 मई से चलेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश से आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण की होगी शुरुआत। राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से समाचारों का होगा प्रसारण। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर शुरू होगा राज्यव्यापी सहयोग शिविर। राज्य में नई खनिज संशोधन नियमावली लागू हुई, बालू पत्थर की ओवरलोडिंग पर 5,00,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, मौसम विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।